मीखा अध्याय चार। मीखा अध्याय चार पद एक। अंत के दिनों में या भविष्य में, अतः हम आने वाले भविष्य की बात कर रहे हैं। ये सब अभी नहीं घटा था, अभी दूर था, लेकिन ये घटित होने वाला है और मैं पूरी तरह सहमत हूं कि निकट भविष्य में ये सब घटित होगा। मीखा अध्याय चार पद एक में आगे। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा की नाई उसी ओर चलेंगे। परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपना सिंहासन स्थापित करेगा और प्रभु के भवन का पर्वत दृढ़ किया जाएगा। मीखा अध्याय चार पद दो। और बहुत जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वो उस राज्य के युग की बात कर रहा है जब यीशु फिर से आकर पृथ्वी पर राज्य करेगा। परमेश्वर उसको दाऊद का सिंहासन देगा और यीशु अब से लेकर हमेशा तक धार्मिकता और न्याय का राज्य करेगा और जाति जाति के लोग यरूशलेम को जाएंगे, क्योंकि प्रभु की व्यवस्था सियोन से आएगी। वे कहेंगे, आओ हम यरूशलेम को चलें और यीशु के कदमों में बैठें और आनंद के साथ सीखें। उस समय तो मैं भी सच में इसराइल की यात्रा करना चाहूंगा जब प्रभु वहां सिंहासन पर बैठकर सियोन में राज्य कर रहा होगा। क्या ये उत्तेजित करने वाला विचार नहीं है? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें इन पुराने 747 हवाई जहाजों में नहीं जाना पड़ेगा। हमारे लिए परमेश्वर के पास एक नया साधन होगा। हम वहां जाएंगे और जब हम वहां पहुंचेंगे तब यीशु वहां हमें पिता के मार्गों के बारे में सिखाएगा और हम यीशु के चरणों में बैठकर सीखेंगे, क्योंकि व्यवस्था सियोन से निकलती है। मेरे लिए ये बहुत महान है, भव्य है, कैसी आशा। मीखा अध्याय चार पद तीन। वो बहुत देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। सो वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों से हसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर ना चलाएंगी। मैं कई बार दुखी हो जाता हूं जब नेता लोग इस वचन का उदाहरण देकर कहते हैं कि अगर आप उनको वोट देंगे तो वे ऐसा ही युग लाएंगे। ये किसी भी नेता के द्वारा नहीं लाया जा सकता है। ये तब तक नहीं आने वाला जब तक यीशु, जो शांति का राजकुमार है, नहीं आ जाता और अपनी धार्मिकता में राज्य नहीं करता। अतः राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई मनुष्य इसमें कुछ कर सके। सच तो यह है कि आज हम सब कुछ ठीक उसके विपरीत कर रहे हैं। हम अपने हल के फाल को पीटकर तलवारें बना रहे हैं। सुरक्षा का खर्च हमें दिवालिया बना रहा है, परंतु परमेश्वर के राज्य में सेना का खर्च खेती के विकास के खर्च में बदल जाएगा। पिछले साल दुनिया में लगभग अरबों अरब रुपया हथियारों, युद्ध सामग्री और रक्षा के लिए खर्च हुआ है। सोचिए, अगर पिछले साल हमने ये धन राशि खेती के विकास पर खर्च की होती तो आज कंबोडिया में और ओडेन के रेगिस्तान में या इथियोपिया में लाखों लोग भूख से ना मरते, सबके लिए भरपूर भोजन होता और अगर ये पैसा दुनिया में खाने पर खर्च होता तो आज हमें रोटी के लिए इतना पैसा खर्च ना करना पड़ता। आप देखिए मनुष्य की मानसिकता कितनी बदल गई है। आज हम अपनी लालच और लालसाओं के अधीन हैं, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने दुश्मन से बचने के लिए हमें हथियारों की आवश्यकता है। इसलिए धन का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है। वो पैसा जो मनुष्य की भलाई में लग सकता है, मनुष्य को समाप्त करने में खर्च हो रहा है। पापी इंसान की मानसिकता कितनी बदल गई है। वार्षिक बजट में अधिक पैसा इंसान की भलाई की अपेक्षा विनाश के लिए नियत किया जाता है। मैं बजट पर बहस नहीं कर रहा। मैं मानता हूं कि रक्षा बजट जरूरी है और अगर हमें बने रहना है तो हमें भी मजबूत होना पड़ेगा। लेकिन ये दुख की बात है कि हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां कुछ लोग अधिक शक्ति और अधिक नियंत्रण के लालची हैं। उनको रोकना जरूरी भी है, जो हथियारों की धमकी से ही हो सकता है। आप एक दुखदायी संसार में वास करते हैं। ये संसार सदा युद्ध की तैयारी में लगा रहता है और एक ऐसा भयंकर युद्ध की ओर बढ़ रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठेंगे। लेकिन काले बादलों में भी प्रकाश की किरण होती है। अगले महायुद्ध के बाद मनुष्य समझ जाएगा कि इसमें ना तो कोई फायदा है और ना ही इसमें कोई भविष्य है। जब मसीह यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आएगा, तब हमारे पास पृथ्वी का एक ही शासक होगा। वो अपना सिंहासन यरूशलेम में सियोन पर्वत पर स्थापित करेगा। उस समय वे अपनी तलवारें पीटकर, हल के फाल और अपने भाले पीटकर हसिया बनाएंगे और वे फिर युद्ध विद्या नहीं सीखेंगे। तब वे सारे साधनों को इंसान के उत्थान के लिए, कृषि विकास के लिए और मनुष्यों के सर्वांगीण भलाई के लिए उपयोग करेंगे। उन दिनों में मीका अध्याय 4:4 वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे और कोई उनको ना डराएगा। आप अपने बच्चों को निर्भय होकर दुकान पर दूध लेने के लिए भेज सकते हैं। आपको कोई चिंता नहीं होगी कि कोई उन्हें छेड़ेगा या सताएगा। आप शाम को समुद्र के किनारे घूम सकते हैं। आप पर हमला करने वाला कोई नहीं होगा। सब सुरक्षित रहेंगे, सब शांति में रहेंगे। आपको किसी का भय नहीं होगा। आपको अपने दरवाजों पर ताला लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको दरवाजों में सुरक्षा जंजीर नहीं लगानी पड़ेगी। आप सुरक्षा और शांति में वास कर सकेंगे। भय का नामो निशान नहीं होगा। मीखा अध्याय 4:4 में आगे लिखा है, सेनाओं के प्रभु ने यही वचन दिया है। वो दिन निश्चय ही आने वाला है। ये परमेश्वर की घोषणा है। मीखा अध्याय 4:5 सब राज्य के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। सच में सारे लोग अभी अपने देवताओं के पीछे चलते हैं, परंतु उन दिनों में सब केवल यहोवा ही का नाम लेंगे। मीखा अध्याय 4:6 यहोवा की ये वाणी है, उस समय मैं प्रजा के लंगड़ों को और बरबस निकाले हुओं को और जिनको मैंने दुख दिया है उन सब को इकट्ठे करूंगा। दूसरे शब्दों में यहां परमेश्वर यहूदियों को फिर से इकट्ठा करने के बारे में भविष्यवाणी दे रहा है। इसराइल के लोग, वे जो लंगड़े हैं, वे जो निकाल दिए गए हैं, वे जिनको दुख दिया गया है। मीखा अध्याय 4:7, और लंगड़ों को मैं बचा रखूंगा और दूर किए हुओं को एक सामर्थी जाति कर दूंगा, और यहोवा उन पर सियोन पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता रहेगा। जी हां, यही यशया ने भी कहा, यशाया अध्याय 9:7, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। मीखा अध्याय 2:8-9, और हे एदेर के गुम्मट, हे सियोन की पहाड़ी, पहली प्रभुता अर्थात यरूशलेम का राज्य तुझे मिलेगा। अब तू क्यों चिल्लाती है? क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? क्या तेरा युक्ति करने वाला नाश हो गया, जिससे जच्चा स्त्री की नाई तुझे पीड़ा उठती है? इस युग से पहले इसराइल को एक बड़े दुखदाई समय से गुजरना पड़ेगा। उन्हें असहनीय पीड़ा होगी। इस पीड़ा के बाद ही सियोन उभरेगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। यहूदी सच में अपने छुड़ाने वाले, अपने उद्धारक के लिए रोएंगे और सियोन कठिन पीड़ा से गुजरेगा। तब वचन बताता है वे बाहर आएंगे। वो यहां स्त्री की प्रसव पीड़ा की उपमा देता है। यीशु ने यहूदियों से कहा था, देखो तुम मुझे दोबारा नहीं देख पाओगे जब तक तुम ये ना कहो, धन्य है वे जो परमेश्वर के नाम से आता है। प्रभु यीशु पिता के पास स्वर्ग में चढ़ गया है और वो तब तक वापस नहीं आएगा जब तक इसराइल पीड़ा में पुकार ना उठे, धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम में आता है। मीखा अध्याय 4:10, हे सियोन की बेटी, जच्चा स्त्री की नाई पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू गड़ी में से निकलकर मैदान में बसेगी। वे निर्जन प्रदेश में खदेड़ दिए जाएंगे, जहां परमेश्वर 3.5 साल तक उनका पालन पोषण करेगा। मीखा अध्याय 4:10 में आगे लिखा है, वरन बाबुल जो इराक है तक जाएगी, वही तू छुड़ाई जाएगी, अर्थात वही यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश में से छुड़ा लेगा, और तब प्रभु का राज्य स्थापित होगा। मीखा अध्याय 4:11, और अब बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध इकट्ठी होकर तेरे विषय में कहेंगी, सियोन अपवित्र की जाए और हम अपनी आंखों से उसको निहारे। वहां बहुत होंगे जो यरूशलेम को लालच भरी आंखों से देखेंगे। मीखा अध्याय 4:12, परंतु वे प्रभु की कल्पनाएं नहीं जानते। आज दरअसल यही हो रहा है। अनेक राष्ट्रों की, विशेष करके अरब राष्ट्र की इसराइल पर और यरूशलेम पर नजर है। वो इसराइल के विरुद्ध एक धर्म युद्ध की पुकार कर रहे हैं। बहुत राष्ट्र उसके विरुद्ध इकट्ठे होंगे। मैं समझता हूं कि इस संसार के सामने अकेला राष्ट्र होना इसराइल का दुर्भाग्य है। लगभग सारे राष्ट्र उसके खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। जैसी जकरिया ने भविष्यवाणी की थी, सारा का सारा संसार उसके विरुद्ध इकट्ठा हो गया। अगर उसकी ओर परमेश्वर ना हो तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाता। परंतु वे प्रभु के विचार नहीं जानते। वे सब यरूशलेम को निहार कर कह रहे हैं, हम यरूशलेम को विश्व का अंतर्राष्ट्रीय शहर बना देंगे, परंतु वे परमेश्वर के विचार नहीं जानते। मीखा अध्याय 4:12-13। ना उसकी युक्ति समझते हैं कि वह उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे कलिहान में पूले बटोरे जाते हैं। हे सियोन, उठ और दाव कर, मैं तेरे सिंगों को लोहे के, सिंग शक्ति का चिन्ह है, मैं तेरी शक्ति सिंगों को लोहे जैसे बना दूंगा। मीखा अध्याय 4:13 में आगे लिखा है, और तेरे खुरों को पीतल के बना दूंगा, मैं तुझे इन राष्ट्रों के विरुद्ध दंड के लिए इस्तेमाल करूंगा। मीखा अध्याय 4:13 में आगे लिखा है, और तू बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगी, और उनकी कमाई यहोवा को, तुम उन्हें लूटने जा रहे हो, तुम उनकी लूट का धन लेने जा रहे हो। हम एहेस्केल के 38वें अध्याय में पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर इसराइल को एक राष्ट्र के रूप में इकट्ठा करेगा, तब वो उन्हें फिर राष्ट्र बनाएगा और उनके विरुद्ध मागोग के अगुओं में शैतानी विचार डालेगा। मागोग भूगोल के अनुसार क्रिमिया पर्वतों का उत्तरी भाग है, ये आज रूस की सीमा में आता है। वो उन्हें उत्तरी दिशा से समुदाय के झुंड में ईरान और इराक और तोगर्मा, बाल्कन के प्रदेश और गोमेर, यूरोप के पूर्वीय देश, लीबिया और इथोपिया के साथ मध्य पूर्व के राष्ट्रों को उन पर धावा बोलने के लिए लाएगा, ताकि उसे लूट कर ले जा सके। लेकिन जब वे इसराइल की पहाड़ी पर आएंगे, तब परमेश्वर का क्रोध उनके सामने आएगा और वो उनको वही से वापस कर देगा। बाइबल कहती है कि इसराइलियों को 7 साल तक ईंधन के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वे आक्रमण करने वाली सेनाओं के ईंधन को 7 साल तक जलाएंगे, इसलिए उनको तेल के दाम के बारे में 7 साल तक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। उन्हें सिर्फ उस ईंधन की इस्तेमाल करना होगा जो उनकी भूमि पर आक्रमण के समय दुश्मनों द्वारा लाया जाएगा। वो 7 साल के लिए काफी होगा। अतः उसने कहा, और तू बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगी और उनकी कमाई यहोवा को अर्पण करेगी, तुम उन्हें लूटोगे, तुम उनकी कमाई लोगे। मीखा अध्याय 4:13 के अंत में लिखा है, और उनकी धन संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण करेगी।